आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे सामने कभी ऐसी स्थिति पैदा मत कीजिएगा जब मुझे आप में और अहाना में से किसी एक को चुनना पड़े। ये शायद अक्षय की चेतावनी थी उनके लिए। अपने बेटे को अपने खिलाफ जाते देखकर उन्होंने तुरंत ही मगरमच्छ के आंसू अपनी आंखों में भरे और बेहद दुखी स्वर में बोला, ये आप क्या कर रहे हैं बेटा? हम ऐसा कुछ क्यों करेंगे? आप गलत समझ रहे हैं हमें। हम जो करते हैं उन्हें कुशल गृहिणी बनाने के लिए करते हैं। आगे चलकर ये घर परिवार उन्हें ही संभालना है, इसलिए उनके साथ थोड़ी सख्ती दिखाते हैं। उनसे हमें कोई निजी बैर तो नहीं? हम जो बोलते हैं और करते हैं उनके और इस परिवार की भलाई के लिए ही करते हैं। अगर उन पर किसी तरह की कोई रोक टोक लगाते हैं तो हमारी परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए ही लगाते हैं। हम भी जानते हैं कि वे गलत नहीं हैं, पर लोगों को बातें बनाने में वक्त नहीं लगता, और एक बार लड़की की इज्जत उछल जाए तो बात फैलते वक्त नहीं लगता, और उनकी इज्जत से हमारे परिवार की इज्जत और मान सम्मान जुड़ा है। हम बस चाहते हैं कि वे किसी को हमारे परिवार के बारे में कुछ बोलने का मौका ना दे। फिर भी अगर तुम्हें हमारा तुम्हारी बीवी को कुछ बोलना पसंद नहीं है तो अब से हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। जो उनका मन हो वो करें, हमारा क्या है, आज है कल नहीं। आगे चलकर परेशानी तुम्हें और उन्हें ही होगी। तब आपको समझ आएगा कि आपकी माँ आपकी और आपकी पत्नी की दुश्मन नहीं थी। जो कहती थी अच्छे के लिए ही कहती थी। एक बार फिर उन्होंने विक्टिम कार्ड चलाया था। बातों का रुख मोड़ते हुए खुद को शरीफ, हितैषी, नेक इंसान साबित कर दिया था। ऐसा जताया जैसे उनसे अच्छा इंसान कोई पूरी दुनिया में नहीं, और अक्षय की बातों से उन्हें बहुत ठेस पहुंची है। बस यही फंस जाता था अक्षय। अपनी माँ से बहस कर नहीं पाता था, और समझाने जाए तो वो कुछ समझती नहीं थी। आदत थी उन्हें खुद को सही दिखाने की, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अक्षय गहरी सोच में गुम कुछ पल खामोशी से उन्हें देखता रहा, फिर उसने गंभीर स्वर में आगे कहा, अहाना प्रेग्नेंट है मम्मी, आपके बेटे का अंश उनके अंदर पल रहा है, और आपकी बातों में आकर मैंने जो गलती की उसकी वजह से कल रात उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अगर उन्हें या हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो ना मैं कभी खुद को माफ कर पाता और ना ही आपको। अब उनके साथ कुछ भी करने से पहले सोच लीजिएगा कि अगर आपके उनके भलाई में उठाए कदम की वजह से उन्हें या हमारे बच्चे को कोई नुकसान हुआ तो खतरे में आपका होने वाला पोता या पोती होंगे, जिनकी इतनी चाहत है आपको। एक बार फिर उसने उन्हें चेतावनी दी थी और उम्मीद थी कि इस बार वे संभल जाएंगे। रूपाली जी उसकी बात सुनकर सुन रह गई थी। वहीं अभिजीत जी भी कुछ चौंक गए। अगले ही पल उन्होंने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से सवाल किया, अक्षय आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ पापा, आप दादू बनने वाले हैं। अक्षय ने अब हल्की मुस्कान के साथ ये बात कही थी। अभिजीत जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अक्षय को गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाई। अक्षय ने भी अपनी खुशी उनके साथ साझा की, फिर एक नज़र रूपाली जी को देखकर वहां से चला गया। अभिजीत जी, जिनके चेहरे पर अब तक दहरी मुस्कान और खुशी झलक रही थी, अब उनके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए थे। और कितना नीचे गिरेंगी आप रूपाली जी, अपने ही बेटे बहू के रिश्ते में दरार डालकर क्या हासिल होगा आपको? हर चीज़ की अति खराब होती है रूपाली जी, और आपने अहाना बहू से नाराज़गी में हर सीमा लांघ दी है। उस मासूम सी बच्ची को जितना आप सताती हैं वो तो सब खामोशी से सह जाती है। अगर उनके जगह कोई और होती तो अब तक आपको सही रास्ते पर ला चुकी होती, पर अब वो अकेली नहीं है, उनके साथ आपका अपना बेटा खड़ा है, और उनके अंदर इस घर की भावी पीढ़ी है। अब तो अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, उन्हें सुकून से जीने दीजिए। इस घर में खुशियों ने प्रवेश किया है, उन्हें अपनी ही नज़र मत लगाइए, वरना आने वाले कल में पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगी। और आज जो बेटा यहाँ आपको समझा रहा था उसके पास आपको छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बच जाएगा, ये परिवार बिखर जाएगा। फिर करती रहिएगा आज इन दीवारों पर शासन। तल्ख लहजे में उन्हें सुनाते हुए वे मंदिर चले गए, भगवान का धन्यवाद करने। आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी थी, सबका मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई भी तो लानी थी, कानपुर भी खबर पहुंचानी थी। थैंक यू हमारे लिए इतना सब करने के लिए। कमरे में पहुंचने के बाद अहाना ने कृतज्ञ भाव से फलक का आभार प्रकट किया। आज उसने जो उसके लिए किया वो बहुत बड़ी बात थी। फलक ने उसकी बात सुनी तो सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, मुझे नहीं भैया को थैंक यू कहिए भाभी, क्योंकि इस थैंक यू के असली हकदार वे हैं, मैं नहीं। फलक की बात सुनकर अहाना चौंक थी और आंखों की पुतलियां फैलाए हैरान परेशान से उसे देखने लगी। उसके सवाल को समझते हुए फलक ने जवाब भी दे दिया, ये सब उन्होंने प्लान किया था, मैंने तो बस वही किया जो भैया ने करने को कहा था। भैया का कहना था कि अगर वे सामने से ये बात मम्मी से करते हैं तो वे समझेंगी नहीं और इन सब का कुछ अलग ही मतलब निकाल लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे ये सब करने को कहा कि इससे शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और वे दोबारा ऐसा कुछ ना करें। अब मम्मी पर कितना असर हुआ और कितना नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना तो साबित हो गया कि गलत आप नहीं मम्मी थी, इसलिए अब से आप इस बात की वजह से बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा और अपना पूरा ध्यान मेरे प्यारे से भैया और इस नन्हे मेहमान पर लगाइएगा। मुझे एक छोटा सा गोलमटोल क्यूट सा भतीजा या भतीजी चाहिए आपसे।
फलक ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। पहले तो आहाना उसकी बात सुनकर चौंक गई, फिर उसके गालों पर शर्म से दहक उठे और पलकें झुक गईं। फलक ने उसके गले से लगाकर ढेरों मुबारकबाद दी। कुछ देर में अक्षय वहां आया तो फलक बाद में मिलने का कहकर वहां से चली गई। आहाना ने भीगी निगाहों से अक्षय को देखा। उन आंखों में बहुत से अनकहे एहसास कैद थे जिन्हें समझने के लिए अक्षय को शब्दों की जरूरत नहीं थी। सधे कदमों से वो आहाना के पास आया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए प्यार से उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, अब ये आंसू क्यों? थैंक यू, आहाना ने भारी गले से कहा और उसकी बात सुनकर अक्षय की भौहें तन गईं। वो क्यों? आपने हमें सही साबित करके मम्मी जी को उनकी गलती दिखाने के लिए जो किया उसके लिए। थैंक यू की जगह कह देती कि आपने मुझे माफ कर दिया तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अक्षय ने गंभीर चेहरा बनाया और आहाना के लबों पर सौम्य सी मुस्कान उभर आई। माफ किया आपको, पर दोबारा कभी उस लहजे में हमसे बात मत कीजिएगा। भूलकर भी नहीं करूंगा, आपकी ऐसी नाराजगी मैं दोबारा नहीं सह सकता, कभी नहीं। अक्षय ने उसे अपनी पनाहों में समेट लिया था और बीते 4-5 दिनों से तड़पते दिल को अब जाकर राहत मिली थी। आहाना ने भी खुद को उसके सुपुर्द कर दिया था और आंखें मूंद कर महसूस कर रही थी इस सुकून को। आहाना, वैसे तो जितनी मम्मी को पोते पोती की चाहत थी, मुझे लगता नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर वो ऐसा कुछ भी करेंगी जिसका असर बच्चे पर पड़े। फिर भी मैं सोच रहा था कि दादी को बुला लूं यहाँ। मम्मी से मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है और मैं सारा दिन आपके साथ नहीं रह सकता। दादी रहेंगी तो अपने तजुर्बे से आपका अच्छे से ख्याल भी रख लेंगी और उनके आगे मम्मी की कुछ गलत नहीं करेंगी। कुछ पल बाद अक्षय ने ये बात कही और आहाना ने सिर हिला दिया। बुला लीजिए, कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए, पर उससे पहले आप अपने घर पर भी ये खुशखबरी दे दीजिए। हम कैसे देंगे, हमें शर्म नहीं आएगी? आहाना ने शर्म से निगाहें झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा। अक्षय पल भर उसके सुर्ख रंग में रंगे चेहरे और झुकी लरजती पलकों को देखता रहा, फिर उसने गंभीर स्वर में बोला, हाँ मैं तो भूल ही गया था, मेरी शर्मीली कैगोर तो जरा जरा सी बात पर शर्मा जाती है।
अक्षय ने जानकर उसे छेड़ा। उसकी बात सुनकर आहाना ने नाराजगी से गाल फुलाते हुए निगाहें उठाकर उसे घूरा और अगले ही पल अक्षय ठहाके मारकर हंस पड़ा, जिससे आहाना और ज्यादा खींच उठी। पहले तो अक्षय के सीने पर 2-4 मुक्के बरसाए, पर जब उसके बाद भी अक्षय चुप न हुआ तो आहाना ने उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। अक्षय ने भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके सर को चूम लिया। कमिंग सून।